आज है 25 जुलाई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। पाकिस्तान में मतदान के दौरान आत्मघाती हमला, क्वेटा बाजार में 31 लोग मारे गए।
तो मैं जब दुकान से बाहर निकला तकरीबन एक दो कदम आगे में चल पड़ा तो धमाका हो गया। धमाका जब हो गया हम सब जगह पे बैठ गए।
मुख्यमंत्री फडणवीस मराठा आंदोलनकारियों से बातचीत को तैयार। प्रदर्शनों के दौरान आज भी हिंसा हुई। और
दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, आदमी अपने हाथ पैर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, बेहोश हो जाता है आदमी।
ये हाल होता है जब भोजन में छिपा कीड़ा दिमाग तक पहुंच जाता है। रिपोर्ट आ रही है, पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के दौरान आज बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। हालांकि पश्चिमी शहर क्वेटा में एक आत्मघाती हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक जब एक शख्स को मतदान केंद्र में घुसने से रोका गया तो उसने खुद को बम से उड़ा लिया। इस्लामिक स्टेट समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बाकी जगहों पर छोटे धमाकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों में एक शख्स की मौत और कुछ के घायल होने की जानकारी है। भारत ने नए दूतावास खोलकर अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका में व्यापार और निवेश बढ़ाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति यावेरी मुसेविनी की उस नीति की तारीफ की जिसके तहत युगांडा से 1970 में निकाले गए युगांडाई एशियाई लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। पिछले 4 महीनों से जर्मनी में रह रहे कैटलोनिया के नेता कार्लस पुजडमोंट ने कहा है कि वो दोबारा बेल्जियम लौट आएंगे। हालांकि स्पेन ने उनके खिलाफ जारी यूरोपियन अरेस्ट वारंट वापस ले लिया है। पिछले साल अक्टूबर में अनाधिकारिक जनमत संग्रह करवाने के बाद कैटलोनिया को स्वतंत्र घोषित करने के बाद से पुजडमोंट अर्जेंटीना आ गए थे। पुजडमोंट मार्च में जर्मनी में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बर्लिन में उन्होंने कहा कि वो ब्रसल्स में राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे।
A Brussel·les hem de continuar la feina que havíem anunciat abans del meu viatge a Finlàndia.
ब्रसल्स में मैं वही काम शुरू करूंगा जो फिनलैंड जाने से पहले किया करता था, वो काम जो हमने निर्वासित सरकार के दायरे में रहकर 1 अक्टूबर 2017 को शुरू किया था। हम हमेशा सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, जरूरी हो तो स्पेन की सरकार से भी। ये देखना हैरानी भरा है कि सरकार ईटीए के आतंकियों के साथ तो बातचीत कर सकती है मगर हमसे मिलने से इनकार कर रही है, जबकि हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं। ये थे कैटलन नेता कार्लस पुजडमोंट के शब्द। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की मदद के लिए 10 दिन की पेड लीव मिलेगी। न्यूजीलैंड की गिनती उन देशों में होती है जहां पर घरेलू हिंसा की दर सबसे ज्यादा है। इस कानून का समर्थन करने वालों का कहना है कि इससे पीड़ितों को अदालत जाने में मदद मिलेगी। ग्रीस में जंगल में लगी आग के बाद बड़ी संख्या में लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। एथेंस के करीब लगी आग में अब तक कम से कम 79 लोग मारे गए हैं। बहुत से लोग तेज हवाओं के कारण भड़की आग की चपेट में फंस गए थे। पूर्वी तट के पास मार्टी नाम का एक रिजॉर्ट भी इस आग की चपेट में आ गया। मैराथन कस्बे के मेयर इलियस सिनाकीज ने आग के मंजर को कुछ इस तरह से बयां किया।
We're still counting because we didn't found yet all the deads. We're missing 14 people at least.
हम अभी भी तलाश कर रहे हैं क्योंकि सभी मृतक नहीं मिल पाए हैं। अभी भी कम से कम 40 लोग लापता हैं। हमें नहीं पता कि कितने लोग आग से बचने के लिए समंदर में कूदे और डूब गए। जले हुए शवों की पहचान करना भी मुश्किल है। शव कोयले की तरह हो गए हैं। ये भी पता नहीं चल रहा कि एक शव है या दो शव आपस में चिपके हुए हैं। ये थे मैराथन कस्बे के मेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को फलस्तीनी क्षेत्र में 250 नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है। उसे यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि अमेरिका ने लाखों डॉलर की मदद रोक दी है। एजेंसी ने कहा कि 500 अन्य पूर्णकालिक कर्मचारियों को पार्ट टाइम अनुबंध दिए जाएंगे। उत्तरी म्यांमार में एक भूस्खलन के बाद कम से कम 27 लोग लापता हो गए हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक कचिन राज्य में भारी बारिश के बाद एक खदान के बाहर मलबे का बड़ा ढेर ढह गया। यहां पर आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला कीमती पत्थर जेड बीनने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। तलाश और बचाव में इसलिए मुश्किल आ रही है क्योंकि इस ढेर के ढहने की आशंका बनी हुई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। पाकिस्तान में लोग संसदीय चुनाव के लिए मतदान करने सुबह से पोलिंग बूथों पर इकट्ठा हो ही रहे थे कि बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ। इसमें अब तक 31 लोग मारे गए हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा, बम विस्फोट और झड़पों की खबरें हैं। संसद की 272 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। साथ ही 4 सूबों यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच मुकाबला है। आप जानते ही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में जेल हो गई है। आज मतदान पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ताज़ा जानकारी चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
ये सायरन की आवाजें क्वेटा शहर में उस धमाके के बाद की हैं जो पूर्वी बाईपास पर बनाए गए मतदान केंद्र के करीब हुआ। वोट डालने आए अकबर खान ने इस घटना का जिक्र कुछ ऐसे किया।
जब वोट कास्ट किया तो काफी थका हुआ था। इस बाद में आया पे दुकान पे बोतल पी रहा था। जब मैंने बोतल खत्म किया तो मैं जब दुकान से बाहर निकला तकरीबन 1-2 कदम आगे में चल पड़ा तो धमाका हो गया। धमाका जब हो गया हम सब जगह पे बैठ गए। ज्यादातर लोग भागने लगे। भागने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जब खामोशी हो गई, सनाचा सी हो गई तो हम सब लोग आ गए। बस जख्मी को उठाने लगे। ऐसा जख्मी हम लोग करके अपनी गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में उठाते रहे।
इस धमाके की जिम्मेदारी चरमपंथी समूह दौलत इस्लामिया ने ली है। उन्होंने अपनी समाचार एजेंसी एमाक पर एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान में सुबह 8 बजे केंद्रीय और 4 प्रांतीय असेंबली के लिए मतदान शुरू हुए। 1-2 जगहों पर छिटपुट झड़पों को छोड़कर माहौल शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय संवाददाता मोहम्मद काजिम ने DIG सिटी एतजाज गौराया के हवाले से बताया कि एक मतदान केंद्र के करीब हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है और घायलों का इलाज सोल अस्पताल में चल रहा है। हमले के बारे में स्थानीय संवाददाता मोहम्मद काजिम ने और जानकारी दी।
पुलिस हुकाम का यहाँ कहना था कि जो खुदकुश हमलावर था वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसके दाखिले को नाकाम बना दिया। और इस मौके पर जो है ना पुलिस के अलावा हुकाम भी मौजूद थे। कुछ देर के लिए मशरकी बाईपास पर तामिरनाव मॉडल स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का सिलसिला रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा ये अमल शुरू किया गया।
इसके अलावा सिंध प्रांत के लरकाना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग कैंप के बाहर भी धमाका हुआ, जिसमें 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस घटना से उनके मतदाताओं को डराया नहीं जा सकता है। हालांकि इन घटनाओं के बाद भी मतदाताओं में चुनाव को लेकर कोई नाउम्मीदी नहीं दिखाई दी।
मैं उस उम्मीद के साथ वोट डालने आया हूं कि मैं जिस भी पार्टी को वोट डालूंगा वो तालीम के लिए जो है वो काम करे, क्योंकि तालीम के बगैर जो है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता बगैर तालीम के।
वोट डाले अपना इसी उम्मीद के साथ के मुल्क के हालात बदले और चेंज आए और हमारे बच्चों के लिए और आप सबके और हमारे जितने भी लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई बेहतरी इस मुल्क में कोई निज़ाम ऐसा बने कि वो सब भी वो सारी चीज़ों का मजा ले सकें जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाली क्लास जो उनके लिए बराबरी हो।
मतदान की सुरक्षा और तालिबान के खतरे के मद्देनजर 370,000 सेना के जवानों को आज सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया था। पाकिस्तान में केंद्रीय असेंबली के लिए 270 सामान्य सीटों पर मतदान हुआ है। इस दौरान 95 पार्टियों के 11,676 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 सूबों और केंद्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 10,59,55,409 है। आज रात से ही मतों की गणना शुरू हो जाएगी। इसके परिणाम कल शाम तक आ जाने की संभावना है। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
क्वेटा में बम विस्फोट में 31 लोग मारे गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हमारे संवाददाता हारून रशीद हैं, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संपर्क हुआ था लेकिन लगता है कि टेलीफोन लाइनें आज हमें दगा दे गई हैं। पाकिस्तान से जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है, लेकिन फिलहाल लौटते हैं भारत की ओर, जहां महाराष्ट्र में मराठों के आंदोलन में पिछले 2 दिन से चल रही हिंसा आज जारी रही। ये हिंसा पिछले 2 दिन से चल रही थी और आज भी वो जारी रही।
जय शिवाय, 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 जय
नवी मुंबई और मुंबई के दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने 3 बसों को आग लगा दी, पर इसके बाद मराठा क्रांति मोर्चा ने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मराठा समुदाय मांग कर रहा है कि उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। मराठी सभा के प्रशांत नानावर से मैंने कुछ ही देर पहले ताजा जानकारी ली।
बिल्कुल, अभी अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट आया है कि हम आंदोलनकारी जो है मराठा समाज के, उनसे बात करने के लिए तैयार है और मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए भी हम तैयार है। लेकिन ये जो पूरा मसला है वो न्यायालय के इलाके में आता है और जब तक न्यायालय इसमें जवाब नहीं देती, इससे कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक हम इससे कुछ निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो भी उनकी मांगे हैं वो सब हम सुनने के लिए तैयार है और जो भी इसमें बेस्ट सुझाव किया जा सकता है वो हम निकालने के लिए तैयार है।
यानी कि उन्होंने मामला फिर से ये कह दिया कि अदालत ही तय करेगी। आप ये बताइए कि आज भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आई हैं, आपके पास क्या जानकारी है? नवी मुंबई और दूसरी जगहों में बसें चलाई गई हैं, ऐसी खबर है?
बिल्कुल, कलमबोली में ये घटना हुई है जहाँ पे बस चलाई गई और सबसे बड़ी हिंसा या सबसे बड़ा आज आंदोलन जो पिछले कई दिनों से शांततापूर्ण चल रहा था, आज उसको थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति तैयार हो गई और थाने शहर में जो नितिन जंक्शन है वहाँ पे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी, जहाँ पे लोगों ने जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और फिर उसके बदले में पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी अभी हमने बात की जो सीपी है थाने के परमवीर सिंह, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि कुछ बाहर के लोग भी वो आंदोलनकारी में शामिल थे और उन्होंने शायद उसमें आंदोलनकारियों में घुस के ये पथराव किया है। तो उनके पास वीडियो शूटिंग है और हम उसका पूरा रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी है उनको हम सजा देंगे।
आंदोलन वापस ले लिया गया है, क्या इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप?
जी बिल्कुल, आज जो नरेंद्र पवार है जो मुंबई समन्वयक है, उन्होंने दोपहर में शिवाजी पार्क एरिया में जो राजर्षि शाहू सभागृह है वहाँ पे एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि हमने आंदोलन वापस ले लिया है।
ये पूरा आंदोलन पिछले 2 साल से शांति पूर्वक चल रहा था, लाखों मराठा झंडा लिए हुए निकलते थे, लेकिन हिंसा नहीं हुई। अब अचानक क्या हुआ कि ये हिंसा भड़क उठी है?
लोगों का यही कहना है, आंदोलन कर्मियों का यही कहना है और कल जो मीटिंग हुई उसमें भी लोगों का यही कहना है कि हम पिछले 2 साल से ये आंदोलन शांततापूर्ण तरीके से कर रहे हैं लेकिन कोई भी हमें इसमें जवाब नहीं दे रहा है। जो चंद्रकांत पाटिल है जो मराठा समिति आरक्षण देने के लिए जो चुनी गई है, तो उस पर चंद्रकांत पाटिल जो मिनिस्टर है वो अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज यही कहा फिर से कि हम लोग उनको आरक्षण देने के लिए तैयार है लेकिन जो आरक्षण दिया नहीं जा रहा है वो सिर्फ न्यायालय के प्रविष्ट है ऐसा कहा जा रहा है। तो यही बात है कि सिर्फ उन्हें बहुत सारे होप मिल रहे हैं लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी सरकार ने भर्ती भी निकाली जहाँ पे 72,000 जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसके लिए, तो उन्होंने कहा है कि ये जॉब आप अभी मत कीजिए, ये भर्ती अभी मत कीजिए ताकि उसमें फिर जो मराठा समाज के लोग हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको वो मौका नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि जो सरकारी नौकरी है या फिर उसके बाकी जो फायदे हैं वो मराठा समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनको नहीं मिल रहा है और इसी कारण लग रहा है कि 2 साल शांततापूर्ण तरीके से आंदोलन करने के बाद अभी वो हिंसा का रूप धारण कर रहे हैं।
ये थे मुंबई से स्थानीय पत्रकार प्रशांत ननावरे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो खोला है उनको बता दें कि पाकिस्तान में आज मतदान था संसदीय सीटों के लिए और क्वेटा शहर में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें 31 लोग मारे गए। टेलीफोन लाइनों ने थोड़ी देर पहले दगा दे दिया था लेकिन फिर वो हमारे कहने पर मान गई हैं। आइए चलते हैं सीधे इस्लामाबाद, जहाँ हमारे संवाददाता बीबीसी उर्दू के हारून रशीद हमारे संपर्क में। हारून साहब, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात सुन रहे होंगे। फाइनल नतीजे कब तक आ जाएंगे पाकिस्तानी संसद की, ये जो चुनाव आज हुए हैं मतदान के?
जी, कोई 10 घंटे तक जारी रहने वाली पोलिंग के बाद, पोलिंग तो खत्म हो गई है और अब काउंटिंग का अमल शुरू है। इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा ये एक पाबंदी लगाई है या एक नई रिवायत डालने की कोशिश की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जब पहला नतीजा आ जाएगा तो वो खुद उसका ऐलान करेंगे, तो अब उसी का इंतज़ार हो रहा है और मकामी चैनल्स को भी जो नतायज हैं वो उसका ऐलान करने से 7 बजे से पहले, जो मकामी वक्त है उससे पहले उसका ऐलान नहीं कर सकते, ये पाबंदी भी उन पर ये लगाई है। तो तमाम तवज्जो अब इसी पे है कि नतायज आना शुरू हों और वो जो गुत्थी पिछले कई माह से थी उसको सुलझा सकें कि आखिर पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और सरकार कौन बनाएगा।
ये खबरें भी आ रही थीं कि इमरान खान ने सबको दिखाकर वोट दिया और उनके वोट खारिज होने के बारे में भी कयास आ रही हो रही थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे, आपके पास कोई खबर है?
जी बिल्कुल, ये ऐसा ही हुआ। वो जब आज इस्लामाबाद में अपना वोट डालने गए तो कई लोग वहाँ मोबाइल कैमरे लेकर खड़े थे और उन्होंने उनके सामने ही अपना स्टैंप लगाया, जो कि पोलिंग की जो असूल हैं उसके खिलाफ माना जा रहा है। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको एक नोटिस भी जारी किया है, उनको तलब किया है 30 जुलाई को कि आकर वो इसकी वजाहत करें कि उन्होंने सबके सामने स्टैंप लगाने का क्यों किया। ये एक खुफिया राय शुमारी होती है, तो कैसे उन्होंने ये असूल जो है वो तोड़ा है। तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन किस हद तक जाते हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये 30 जुलाई को मालूम हो जाएगा।
अरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह के कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को बता पाएंगे कि पाकिस्तान में सियासी तस्वीर यानी राजनीतिक तस्वीर कितनी साफ है और कितनी धुंधली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और एक बार फिर हिंदुस्तान। गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को एक स्थानीय अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2015 का है, जब पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक और उनके साथियों पर विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। हार्दिक के साथ उनके साथियों यानी कि लालजी पटेल और AK पटेल को भी सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद से भार्गव पारिक की रिपोर्ट सुनिए मानसी दास से।
हार्दिक पटेल और 17 और लोगों के खिलाफ 2015 में शिकायत दर्ज हुई थी। इनमें से 14 को आज रिहा कर दिया गया। सरकारी वकील चंदन सिंह राजपूत ने अदालत के फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
वो तीनों को 2-2 साल की और 50,000 रुपया का जुर्माना, और जुर्माना की रकम में से मीडिया कर्मी को 10,000 रुपया कॉम्पेंसेशन, धारा सभ्य को 40,000 रुपया कॉम्पेंसेशन और बाबूजी ठाकुर को 1,00,000 रुपया कॉम्पेंसेशन देने का हुक्म किया है।
अदालत ने हार्दिक पटेल और उनके दोनों साथियों की जमानत भी लगे हाथ मंजूर कर ली, क्योंकि उन्हें 3 साल से कम की सजा हुई थी। तीनों को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली। पाटीदार समुदाय 25 अगस्त को अपनी मांगे मनवाने के लिए अनशन की शुरुआत करने वाला है। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के प्रवक्ता निखिल संवाणी का आरोप है कि राज्य सरकार इस अनशन को सफल नहीं होने देना चाहती।
25 अगस्त जो उपवास आंदोलन करने वाला थे, इसलिए वो शुरू ना हो, ये तो उस वजह से कुछ न कुछ सरकार पर प्रेशर हो रहा है, इसलिए गलत एविडेंस रख के हार्दिक को ये दोषी बना के करवा दिया है। इसलिए जो आने वाले जो 25 अगस्त है वो उपवास आंदोलन के लिए डिक्लेयर की थी, वो आन बान और शाम से उपवास आंदोलन।
हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल ने भी बीबीसी को बताया कि 25 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
अभी जमानत तो मिल गई है मैडम, 25 अगस्त को अनशन पर बैठने का है। वो तो अभी तो मंजूरी मांगी है, लेकिन मंजूरी देगा वहाँ बैठेंगे।
जमानत से छूटने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले के विरोध में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिस अनशन के कार्यक्रम को खत्म करने के लिए उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश हो रही है, उसके आयोजन से पहले वो इसी महीने की 29 तारीख से गुजरात के हर तहसील में मीटिंग भी करने वाले हैं। हार्दिक पटेल 2015 में गुजरात की राजनीति को झकझोर कर रख देने वाले पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने गुजरात में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न माने जाने वाले पटेल समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन छेड़ रखा है। हार्दिक पटेल की दलील है कि पटेल समुदाय के सभी लोग अमीर होते हैं, ये मिथक है। 2015 का हुआ पाटीदार आंदोलन तेजी से फैला और कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 10 लोग मारे गए। अहमदाबाद समेत कई शहरों में प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। कोर्ट का फैसला आने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, गुजरात चुनाव से पहले भाजपा कहती थी कि हमने सभी आंदोलनकारी पर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं, तो फिर ये सजा का ऐलान कौन से गुनाह में है। सलाखों से नहीं डरता, बात अगर मेरी होती तो बैठ जाता घर में, लेकिन बात करोड़ों गरीबों की है, जितना दबाओगे उतना ही चुनौती बन के उभरूंगा।
ये थी भार्गव पारिक की रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत किया मानसी दास ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अफ्रीका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर युगांडा की संसद को संबोधित किया और ऐलान किया कि भारत अफ्रीकी महाद्वीप में 18 नए दूतावास खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका में निवेश भी करेगा और व्यापार भी बढ़ाएगा। सुनिए एक रिपोर्ट भूमिका राय से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसी रिश्ते बेहतर करने की दिशा में भारत अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोलेगा और कम से कम 40 अफ्रीकी देशों में भी निवेश करेगा। उन्होंने 10 सूत्रों में अफ्रीका के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने की रूपरेखा बताई, जिसमें कई आयामों पर एक साथ काम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का समर्थन करना शामिल है।
इंडियाज एंगेजमेंट
विद अफ्रीका विल कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय 10 प्रिंसिपल्स।
अफ्रीका हमारे लिए प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहा है और रहेगा। हम अफ्रीका के साथ अपने संबंध और मजबूत करेंगे। हमारे लिए रिश्ते मजबूत करने में हम आपकी प्राथमिकताओं को पहली नजर में रखेंगे। तीसरा, अपने बाजार आपके लिए खुले रखेंगे। डिजिटल क्रांति के भारत के अनुभव को आपके साथ हम साझा करेंगे और अफ्रीका भी इसका फायदा उठा सकेगा। इसके लिए आपका सहयोग करेंगे। हम अफ्रीका में खेती के विकास के लिए काम करेंगे। छठा, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र के लिए हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे जिससे अफ्रीका और भारत के लोगों को लाभ पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देश युगांडा की 2 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने वहां के राष्ट्रपति यूवेरी के मुसेवेनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। कल देर शाम उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और आज युगांडा की संसद में उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई।
मैं संसद में यहाँ युवा चेहरे देख रहा हूँ और गणतंत्र के लिए ये अच्छी बात है।
इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी और गांधी के दर्शन को भी याद किया और कहा कि गांधी की सीख भारत और अफ्रीका दोनों को जोड़कर रखती आई है।
महात्मा गांधी फर्मली बिलीव दैट इंडिया फ्रीडम विल रिमेन इनकम्प्लीट सो लॉन्ग एज अफ्रीका रिमेन्स इन बॉन्ड।
महात्मा गांधी मानते थे जब तक अफ्रीका गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा भारत की आजादी अधूरी रहेगी।
इससे पहले मोदी ने युगांडा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए भारत पूरी कोशिश करेगा और दोनों देश एक साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे।
ये रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
दिन भर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। मैं हूं राजेश जोशी और अब चर्चा सेहत की। हम में से बहुत से लोग पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बहुत चाव से खाते हैं। मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग खाते होंगे। मोमो, बर्गर, सलाद, ऐसी कई सब्जियां हैं जो कच्चे खाना लोग पसंद करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन स्वादिष्ट पत्तों में एक ऐसा कृमि या कीड़ा होता है जो आपके पेट में पहुंचकर दिमाग तक का रास्ता तय करता है। आगे क्या होता है सुनिए भूमिका राय से।
अगर आप भी राह चलते चाउमीन, बर्गर, चिकन, फिश खा लेते हैं तो अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ी तब्दीली लाएं। हो सकता है कि इन आदतों के चलते कुछ परजीवी आपके शरीर में घुस जाएं और आपके शरीर को अपना नया घर बना लें। टेपवर्म एक ऐसा परजीवी है जो इंसान के शरीर में सालों तक रह सकता है, वो भी सैकड़ों की संख्या में। थोड़े दिन पहले ही गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में एक 8 साल की बच्ची पहुंची और अस्पताल पहुंचते ही बेहोश हो गई। अस्पताल में उसका सिटी स्कैन हुआ तो दिमाग में छोटे छोटे कई सिस्ट नजर आए। ये सिस्ट कुछ और नहीं बल्कि टेप वर्म के अंडे थे, वो भी 100 से ज्यादा की संख्या में। इसका असर ये था कि बच्ची के सिर में पिछले 6 महीने से लगातार दर्द बना हुआ था और उसे अक्सर दौरे पड़ते थे। फोर्टिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता बच्ची का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी से बताया,
बच्ची जो है हमारे पास ऑलमोस्ट बेहोश अवस्था में आई थी। इसका वेट बहुत बढ़ चुका था, करीब 60 किलो की हो गई थी। इस उम्र में भी ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी, कुछ खा पी नहीं पाती। तो हमने एनालाइज किया तो हमें मालूम चला कि इसके ब्रेन में 100 से भी अधिक टेपवर्म के अंडे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में बहुत ज्यादा सूजन और इन्फ्लेमेशन है। फिर हमने सबसे पहले इसको दिमाग की सूजन कम करने की दवाई दी, जिससे दिमाग में थोड़ी सूजन कम करने से बच्ची धीरे धीरे होश में आई और उसका सांस फूलना कम। जब बच्ची थोड़ी सी बेटर हो गई तो हमने उसको उन कीड़े के अंडों को मारने की दवाई धीरे धीरे चालू करी। धीरे धीरे जैसे जैसे कीड़े मरने लगे तो ब्रेन में सूजन और इन्फ्लेमेशन दोनों कम होने लगी और बच्ची बेटर होती गई।
हालांकि शरीर में टेपवर्म का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 100 से अधिक अंडों का दिमाग में होना जरूर रेयर है। डॉक्टर प्रवीण के मुताबिक भारत में करीब 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में टेपवर्म है। इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कहते हैं।
इससे दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, आदमी अपने हाथ पैर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, बेहोश हो जाता है आदमी और उसे लगातार दौरे पड़ते।
टेपवर्म अगर एक बार शरीर में पहुंच जाए तो सालों तक शरीर में रह सकता है। दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट नरेश बंसल मानते हैं कि इसके लिए हमारी रोजमर्रा की आदतें ही जिम्मेदार हैं।
इफ
वर्म बेसिकली फीता कर्मी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो टैप वर्म गंदे पानी में या साफ पानी में भी इनके होते हैं, अनहाइजीनिक फूड की वजह से या पानी की वजह से होता है। तो जब ये अनहाइजीनिक फूड जो होता है, जैसे अंडर कुक्ड मीट है, कम पका हुआ मीट है, स्पेशली पोर्क है, बीफ है या फिश है, या फिर कई बार जो है गंदे पानी के पीने की वजह से इसके अंडे जो है वो शरीर में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू फिर या तो ये लीवर में चले जाते हैं या शरीर के किसी भी अन्य भाग में जा सकते हैं, दिमाग में भी पहुंच सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कच्चा या अधपका मांस खाने की वजह से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सब्जियों को अच्छी तरह साफ न किया जाए या फिर अच्छी तरह पकाया नहीं जाए तो भी टेपवर्म शरीर में चले जाते हैं।
साग सब्जियों से भी खतरा है, जैसे जो गंदे पानी में जो उगाई जाते हैं, आपने धोकर के नहीं खाया है और वो गंदगी उस पर लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
कितना खतरनाक होता है एक टेपवर्म का शरीर में जाना?
देखिए, टेपवर्म अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो सामान्यतः आपको उल्टी आती है, बुखार आता है, लूज मोशन होते हैं, पेट में दर्द रहता है और उसके बाद में ये लीवर में जा सकता है। लीवर में जाकर के वहाँ पे पस बना देते हैं, सिस्ट बना देते हैं और शरीर के किसी भी अन्य भाग में जैसे स्प्लीन में भी चले जाते हैं। और दिमाग में जाने पर, अगर दिमाग में चले जाते हैं तो फिर दौरे आने लगते हैं, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं जैसे सीजर्स कहते हैं, और वहाँ पर जाकर के सिस्ट बना लेते हैं। और ये एक बार इंटेस्टाइन में जाने के बाद में अंडे देते हैं और इन अंडों से काफी सारे टेपवर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो फिर इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
इससे बचने के लिए उपाय ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छी तरह से पका करके खाएं, जो जैसे मीट है, फिश है या वेजिटेबल्स है उनको अच्छी तरह से धोएं, अच्छी तरह से पकाएं और साफ पानी को यूज करें।
डॉक्टर बंसल मानते हैं कि टेपवर्म जानलेवा नहीं है, ये मानकर इसे लापरवाही में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये शरीर के किसी ऐसे संवेदनशील अंग में भी जा सकते हैं जिससे शरीर का वो हिस्सा लकवा ग्रस्त भी हो सकता है।
तो कच्ची सब्जियां अगर खाएं तो भूमिका राय की इस राय को आप जरूर ध्यान में रखें। फिलहाल सूर्यांशी पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं और खेल की खबरें लेके आई हुई हैं। सूर्यांशी, आपके पास क्या ताज़ा खबर है?
हाँ, आपने राय की बात करी तो अभी एक बहुत ही ज़रूरी राय जो है वो सेरेना विलियम्स ने रखी है। राय नहीं कह सकते इसे, बट एक उनकी एक असमंजस उनकी ज़रूर है जो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके जिक्र किया है।
सेरेना विलियम्स जो अंतर्राष्ट्रीय
टेनिस प्लेयर
हैं, जी हाँ,
और उन्होंने ये लिखा है कि अब समय आ गया है कि कभी कभी डोप टेस्ट के कभी कभी हर बार डोप टेस्ट हो रहा है और केवल सेरेना का। यह साबित हो चुका है कि अन्य सभी खिलाड़ियों की तुलना में मेरे ज्यादा डोप टेस्ट हुए हैं। भेदभाव, मैं ऐसा सोचती हूं, कम से कम मैं खेल को साफ सुथरा रखूंगी। ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स ने खुद ट्वीट किया है और उन्होंने बार बार हो रहे डोप टेस्ट से अपनी परेशानी जताई है। बहरहाल, अगर हम उनके खेल की बात करें तो अब अगले महीने रॉजर्स कप में वो खेलने के लिए टेनिस कोर्ट में उतरेंगी और उन्हें टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। तो कनाडा में होने वाले इस इवेंट में वो 2014 में आखिरी बार खेली थी और अब आपको दोबारा खेलती हुई दिखेंगी।
और हिंदुस्तान से कोई खबर है?
हाँ, आईसीसी रैंकिंग जो है वो दोबारा जारी की गई है जिसके अंदर वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा और उन्हें आईसीसी पुरुष रैंकिंग में अपनी जगह पक्की करने का मौका मिल गया क्योंकि वो नंबर एक पोजिशन पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यांशी पांडे। और सभा के अंत में एक नजर सुर्खियों पर। बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के दौरान आज बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, हालांकि पश्चिमी शहर क्वेटा में एक आत्मघाती हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भारत ने नए दूतावास खोलकर अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका में व्यापार और निवेश बढ़ाएगा। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत घरेलू हिंसा के शिकार लोग मदद के लिए 10 दिन की पेड लीव ले सकते हैं। ग्रीस में जंगल में लगी आग के बाद बड़ी संख्या में लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। एथेंस के करीब लगी आग से अब तक कम 79 लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को फलस्तीनी क्षेत्र में 250 नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है क्योंकि अमरीका ने लाखों डॉलर की मदद रोक दी है। उत्तरी म्यांमार में एक भूस्खलन के बाद कम से कम 27 लोग लापता हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार और मुख्य समाचारों के साथ ही हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा यहीं संपन्न होती है। आज स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान और कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की अभिमन्यु साहा ने। सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। कल सुबह हमेशा की तरह 6:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।